आप हैं SBS हिंदी के साथ। इस बुलेटिन में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री पेनी वोंग अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक के लिए उत्सुक। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने किया पैसिफिक के साथ एक रूप जुड़ाव का आह्वान। और खेल में विंबलडन क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद हो सकता है कि अब सीधे विंबलडन के फाइनल में जा सकते हैं निक क्यूरियोस। अब समाचार विस्तार से। अगले सोमवार यानी 11 जुलाई से कोविड-19 टीके की चौथी खुराक के लिए 7 मिलियन से अधिक लोग पात्र होंगे। ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी इम्यूनाइजेशन संस्था आटाजी ने अपनी सलाह में परिवर्तन किया है। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अब वैक्सीन की चौथी खुराक लेने की सलाह दी जाएगी, हालांकि ये अनिवार्य नहीं होगा। और 30 से 49 वर्ष की आयु के लोग अब चाहें तो एक टीका प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले चौथी खुराक केवल 65 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध थी। उनके अलावा विकलांग, देखभाल में काम करने वाले लोग या ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है भी शामिल थे। टीके की खुराक या पूर्व संक्रमण और एक टीके की खुराक के बीच न्यूनतम समय को भी 4 महीने से घटाकर 3 कर दिया गया है। संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए आटाजी ने यह कार्यवाही की है। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर का कहना है कि बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं।
The major focus of the fourth dose campaign is to reduce that risk of severe disease, hospitalisation and death, which is why there's such a strong focus on people aged over 50, as well as younger people who have compromised immunity or other health conditions. So there is no question that taking another fourth dose will boost your immunity, particularly if it's been several months since you had your booster. Some people had their boosters over the course of summer.
विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि वे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठक के लिए तैयार हैं। G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में चल रहा है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि चाइना के विदेश मंत्री वैंग यी G20 बैठक से इतर अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सुश्री वोंग का कहना है कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकों की व्यवस्था करने की स्थिति अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की तुलना में अधिक तरल है। वे कहती हैं कि चीन को ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध सुधारने के लिए तैयार रहना होगा।
What I've said publicly, and it remains the Albanese government's position, is that we believe it would be in China and Australia's interest for this relationship to be stabilized. And that would require both parties to make a step.
रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने हाल ही में सिंगापुर में अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री 2019 के बाद से अपने चीनी समकक्ष से नहीं मिले हैं। न्यू साउथ वेल्स के हंटर और मध्य उत्तरी तट क्षेत्र अधिक भारी बारिश के बाद नदियों में जलस्तर में अचानक वृद्धि का सामना कर रहे हैं। फिलहाल 74 निकासी आदेश और 36 चेतावनियां लागू हैं, जिसमें लगभग 60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। सिडनी से 197 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में सिंगलटन शहर के निवासियों को घर खाली करने की तैयारी करने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि हंटर नदी में बाढ़ जारी है। सिंगलटन के पास मेटलैंड शहर में भी बड़ी बाढ़ की आशंका है। इस बीच पश्चिमी सिडनी और आसपास के क्षेत्रों में वसूली के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें 30,000 निकासी को अब अपने घरों से में लौटने की अनुमति दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। थेरेसा फेजेली सिडनी के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके में कैमडेन की मेयर हैं।
What a resilient town. How proud to be mayor of a town that is so resilient. But I can see the sadness in their eyes. And, I just bumped into some of the club presidents. One of the ladies was just so distressed about it all. But I said to her, look, And they all been saying how great to see that the community is all behind them. And just seeing the presence of ADF, RFS, SES is all making them feel relieved.
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दुख और राहत दोनों की भावनाएं हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने पैसिफिक के साथ अधिक दीर्घकालिक दृष्टि स्थापित करने का आह्वान किया है। सिडनी के लोई इंस्टीट्यूट में हुए एक कार्यक्रम में उनके सामने सवाल रखा गया कि क्या सोलोमन द्वीप में चीन का व्यापार और सुरक्षा समझौता न्यूजीलैंड के लिए उतना ही बड़ा चिंता का विषय है जितना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए। पीएम से सवाल किया गया कि क्या उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को ले अलग तरीके से निपटा जा सकता था। जवाब में सुश्री आर्डन ने कहा कि इस बात को समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है कि अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों के बारे में निर्णय लेने के लिए सोलोमन द्वीप का पूरा अधिकार है।
Yes, we have long-standing and deep relationships. China has quite long-standing relationships in the Pacific too. And the Solomon Islands in 2019 obviously flipped their recognition from Taiwan to China. And who are we to argue on that when New Zealand itself holds a one China policy? So where our point of contest here is, though, is the fact that we're entering into this space that could lend itself to militarization, which we have deep concern over.
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों अगले सप्ताह प्रशांत द्वीप समूह फोरम में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 16 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस दर्ज किया है। माना जा रहा है कि मई महीने में 15.97 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कोयले और अन्य खनिज ईंधन के निर्यात में वृद्धि से प्रभावित हुआ था। हालांकि मार्केट को उम्मीद थी कि यह आंकड़ा केवल 10.5 अरब डॉलर के आसपास होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 58.4 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया और 42.4 बिलियन डॉलर मूल्य का आयात किया। आयात में सबसे आगे इम्पोर्टेड ईंधन और ल्यूब्रिकेंट्स और गैर औद्योगिक परिवहन उपकरण रहे। इस बीच दिसंबर के बाद पहली बार नौकरी के नए विज्ञापनों में गिरावट आई है। हालांकि जून के महीने में एसीक पर नई नौकरी विज्ञापन संकेतक में 2.1% की गिरावट के बावजूद नौकरी के विज्ञापन अभी भी पूर्व महामारी के स्तर से 71.9% ऊपर हैं। देश में मौत की सजा को खत्म करने के लिए बढ़ती मांग के बावजूद सिंगापुर ने दो ड्रग तस्करों को प्राणदंड देकर मार डाला है। मलेशियाई नागरिक कलवंत सिंह और सिंगापुर के व्यक्ति नौराश्री गौस को फांसी दे दी गई है। कलवंत सिंह को 2016 में देश में हेरोइन लाने का दोषी ठहराया गया था। इस साल सिंगापुर में अब तक 4 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सिंगापुर हाल के वर्षों में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए लोगों को फांसी देने वाले 4 देशों में से एक है। आलोचकों का कहना है कि सिंगापुर की नीति में आमतौर पर निम्न स्तर के ड्रग म्यूल्स को फंसाया जाता है, लेकिन देश की सरकार का कहना है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौत की सजा जरूरी है। अब मुद्रा दर की जानकारी में, इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 68 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53.85 रुपए हो गई है। अब खेल समाचार में, ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी निक क्यूरियोस बिना सेमीफाइनल खेले ही विंबलडन में मेन सिंगल्स के फाइनल में पहुंच सकते हैं। क्वार्टर फाइनल में क्यूरियोस की सीधे सेटों की जीत के बाद सेमीफाइनल मैच स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल के खिलाफ तय हुआ है, लेकिन हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने वाले 36 वर्षीय नडाल पेट की चोट से जूझ रहे हैं और उन्होंने इस बात की कोई गारंटी नहीं दी है कि वे कल यानी शुक्रवार रात को क्यूरियोस के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। अगर वे नहीं खेल पाते हैं तो क्यूरियोस वॉकओवर के जरिए फाइनल में पहुंच सकते हैं। नडाल का कहना है कि उन्हें चोटों के साथ खेलने की आदत है, लेकिन उनकी मौजूदा चोट जो अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के दौरान लगी थी, रातों रात काफी खराब हो गई।
today was the worst day, and have been an important increase of pain and limitation.
उधर भारत की टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा को विंबलडन के मिक्स डबल्स में सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. सानिया मिर्जा और माठे पाविच की जोड़ी को मिक्स डबल के सेमीफाइनल में अमेरिका की डेजरी क्रावचेक और यूके के नील्स कप्सी से हार का सामना करना पड़ा. माना जा रहा है कि सानिया का विंबलडन में ये आखिरी मैच है, क्योंकि इस सीजन के अंत में वे टेनिस खेल से रिटायर होने वाली हैं. और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान. पर्थ में आंशिक बादल की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 23 डिग्री तक जाएगा. एडलेड में एक या दो बौछार की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 15 तक जाएगा. मेलबर्न में कल बारिश के आसार और यहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम 13 डिग्री तक रहेगा. कैनबरा में कल बादल छाए रहेंगे, वहां का न्यूनतम तापमान -1 -1 तक गिरेगा और अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक रहेगा. सिडनी में भी कल आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 17 डिग्री. ब्रिस्बेन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान होगा 20 डिग्री. डार्विन में भी मौसम साफ रहेगा, वहां का न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 29 डिग्री तक जाएगा. और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 38 डिग्री. मौसम की जानकारी के साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं. धन्यवाद.
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें. SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें.